अगली सुबह हवेली हमेशा की तरह जल्दी जाग गई थी। आंगन में पानी डाला जा चुका था, तुलसी के पास अगरबत्ती की हल्की खुशबू फैल रही थी और रसोई घर में बर्तनों की आवाजें गूंजने लगी थीं। रसोई में मधु चाय चढ़ाकर खड़ी थी, भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और वो जल्दी जल्दी कप ट्रे में सजा रही थी कि तभी उसकी दुपट्टा के पल्लू में रखा फोन कंपन करने लगा। मधु एकदम घबरा गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। तब उसने फोन निकालकर कान से लगाया। उधर से आवाज आते ही उसके चेहरे का रंग हल्का उड़ गया। नहीं मैडम, मैं ये नहीं करूंगी, उसकी आवाज कांप गई। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप सुनती रही, फिर उसके चेहरे पर और डर उतर आया। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? उधर से शायद कुछ सख्त कहा गया। मधु की उंगलियां कांपने लगीं। ठीक है, अचानक उसकी आंखों में डर साफ उतर आया। उधर से आखिरी बार धीमी लेकिन सख्त आवाज आई, ऐसा नहीं किया तो याद रखना, और अगले ही पल फोन कट गया। मधु कुछ सेकंड वैसे ही खड़ी रह गई। उसका गला सूख चुका था। वो घबराकर जल्दी से फोन छिपाने लगी। तभी पीछे से दूसरी नौकरानी की आवाज आई, मधु चाय तैयार हुई? मधु लगभग चौंक पड़ी। हाँ हाँ, उसने जल्दी से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हवेली में रोज की हलचल शुरू हो गई। विश्वनाथ, आर्यन और बाकी लोग ऑफिस के लिए निकलने लगे। अदिति भी जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई और सबके साथ हंसी मजाक करते हुए बाहर चली गई। धीरे धीरे हवेली शांत होने लगी। अब बस रत्ना देवी अपने कमरे में थी और बाकी नौकर नौकरानियां अपने अपने काम में लगे थे। मधु पूरे समय बेचैन घूमती रही। उसके चेहरे पर साफ डर था। वो बार बार ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। आखिर जब उसे लगा कि ऊपर कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई पहली मंजिल पर पहुंची। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद आवाज सुनाई दे रही थी। वो सीधे आर्यन के कमरे के बाहर रुकी। कुछ सेकंड तक उसने दरवाजे को देखा, फिर जल्दी से अंदर घुस गई। कमरा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित था। हल्की खुशबू अब भी फैली हुई थी। मधु ने तुरंत दरवाजा आधा बंद किया और घबराई नजरों से कमरे को देखने लगी। जल्दी कर मधु, उसने खुद से बुदबुदाया। फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक एक दराज खोलने लगी, कपड़े, फाइलें, घड़ियों के बॉक्स, लेकिन उसे शायद कुछ और चाहिए था। वो जल्दी जल्दी चीजें इधर उधर देखने लगी। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। तभी अचानक बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। मधु एकदम जम गई। अगले ही पल दरवाजा खुला, दूसरी नौकरानी अंदर आ गई। मधु का चेहरा सफेद पड़ गया। तो तुम यहां? दूसरी नौकरानी ने हैरानी से पूछा। मधु ने तुरंत खुद को संभाला। हाँ, वो तेरी मदद के लिए आई हूं। मेरी? तू ही तो बोल रही थी ना कमर में दर्द है, दूसरी नौकरानी थोड़ा सहज हुई। हाँ लेकिन, मधु जल्दी से झाड़न उठाकर बोली। चल तू झाड़ू पोछा कर ले, मैं डस्टिंग कर देती हूँ। दूसरी नौकरानी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मधु ने राहत की सांस ली। अब वो सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कमरे की चीजें साफ करने लगी, लेकिन उसकी नजर लगातार अलमारी पर थी। दूसरी नौकरानी नीचे झुककर फर्श साफ करने लगी। मौका देखते ही मधु फिर धीरे से अलमारी के पास पहुंची। इस बार उसने नीचे वाला हिस्सा खोला। अंदर पुराने बॉक्स और कुछ फाइलें रखी थीं। मधु जल्दी जल्दी उनमें देखने लगी। फिर अचानक उसकी नजर बिल्कुल नीचे कोने में रखी एक मोटी पुरानी एल्बम पर पड़ी। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। एल्बम पर हल्की धूल जमी हुई थी। मधु ने जल्दी से उसे खोला और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। पहले पन्ने पर फोटो का बड़ा कोलाज बना था। आर्यन और श्यामली दोनों अलग अलग तस्वीरों में साथ दिखाई दे रहे थे, कहीं हंसते हुए, कहीं किसी फंक्शन में, कहीं बहुत करीब खड़े। तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने बड़ी सावधानी से ये सब जमा किया था। मधु कुछ सेकंड समझ ही नहीं पाई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ उतर आई। ठाकुराइन, छोटे ठाकुर के साथ, उसके मुंह से धीरे से निकला। उसने जल्दी जल्दी कुछ और पन्ने पलटे। हर जगह वही तस्वीरें, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ ऐसे पल जिनमें श्यामली और आर्यन बेहद करीब दिख रहे थे। मधु का माथा ठंडा पड़ने लगा। उसे शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। लेकिन अगले ही पल उसे फोन वाली बात याद आ गई। उसने तुरंत एल्बम बंद की, फिर इधर उधर देखकर उसे अपने दुपट्टे के नीचे छिपा लिया। उसी समय दूसरी नौकरानी उठी। अरे, तूने इतनी जल्दी सफाई भी कर दी? मधु जल्दी से बोली। हाँ, नीचे भी काम है ना? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन दूसरी नौकरानी ने ध्यान नहीं दिया। मधु लगभग जल्दी जल्दी कदमों से कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते वक्त भी वो बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी रोक लेगा। नीचे पहुंचकर उसने जल्दी से रसोई में जाकर पानी पिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। फिर उसने बहाना बनाया, मैं बाजार तक जा रही हूँ, सब्जी खत्म हो गई है। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मधु तुरंत हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गई। बाहर सड़क के किनारे एक काली कार पहले से खड़ी थी। उसका शीशा धीरे से नीचे हुआ। अंदर अक्षरा बैठी थी, चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडी शांति। मधु तेजी से कार के पास पहुंची। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा, फिर साड़ी में छिपी एल्बम निकालकर अक्षरा की तरफ बढ़ा दी। अक्षरा ने बिना कुछ कहे एल्बम ले ली। उसकी नजर जैसे ही कवर पर गई, उसके होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मधु घबरा कर बोली, अब मेरा नाम कहीं नहीं आएगा ना? अक्षरा ने बस उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली। फिर कार का शीशा ऊपर होने लगा। अगले ही पल कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई और मधु वहीं खड़ी रह गई, डर, घबराहट और एक अनजाने खतरे के एहसास के साथ।